नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा में चर्चा के लिए कुल 18 घंटे और राज्यसभा में 16 घंटे निर्धारित किए गए हैं। सदन में धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में देश के भविष्य के लिए प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।
माननीय राष्ट्रपति का संसद के संयुक्त सत्र को दिया गया संबोधन उल्लेखनीय रहा है। ये 21वीं सदी का पहला भाग है जो हमारे राष्ट्र के आगामी 25 वर्षों के सफर की नींव रखता है।
भाजपा के तेजस्वी सूर्या ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। राज्यसभा में भी अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई है। नामांकित सदस्य सी सदानंदन मास्टर ने सदन में धन्यवाद प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। बजट में विनिर्माण, अवसंरचना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। बजट में रिटर्न संशोधित करने की समय सीमा को पहले के 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च और आयकर रिटर्न की देय तिथियों को अलग अलग किया गया है। निजी उपयोग की वस्तुओं पर शुल्क 20% से घटाकर 10% करने से व्यक्तिगत आयात सस्ता हो जाएगा। कैंसर की 17 प्रकार की दवाओं और कुछ दुर्लभ बीमारियों के उपचारों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी मंच ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे एक प्रगतिशील और व्यापक रूपरेखा वाला बताया है, जो भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के साथ ही निवेश को बढ़ावा देता है और व्यापार को आसान बनाता है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सिट्टी ने कहा है कि बजट देश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ नवाचार और उन्नत विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए अवसर प्रदान किए गए हैं। नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने इस वर्ष के बजट को अगली पीढ़ी का बजट बताया। उन्होंने प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावास बनाने के निर्णय का स्वागत किया।
ये जो पूरा बजट है, ये देश के हर वर्ग को भरोसा देता है और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और एक साफ रोड मैप दिखाने वाला ये पूरा बजट है। बहुत ही शानदार लगा मुझे इस बजट में हमारी लड़कियों के लिए जो हॉस्टल्स हैं, अब हर जिले में जब हॉस्टल बनेंगे तो लड़कियों को बेहतर एजुकेशन के लिए, अपने रोजगार के लिए अवसर मिल पाएंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पेन्नैयार नदी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबित विवाद के निपटारे के लिए विशेष न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने और एक महीने के भीतर जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने को कहा। सरकार ने ईमेल के माध्यम से प्रसारित हो रहे एक फर्जी संदेश का खंडन किया है। इसमें लोगों से ई पैन कार्ड डाउनलोड करने का अनुरोध किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि प्रसारित हो रहे ईमेल फर्जी हैं। सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे वित्तीय और संवेदनशील जानकारी साझा करने से संबंधित ऐसे ईमेल, लिंक, कॉल और एसएमएस पर प्रतिक्रिया न दें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कम दृश्यता के कारण कई उड़ान और रेलगाड़ियों का संचालन बाधित हुआ है। दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को सलाह जारी कर संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने को कहा है। भारतीय रेलवे के अनुसार 11 रेलगाड़ी 2 घंटे से अधिक की देरी से चल रही हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी रेलगाड़ियों की स्थिति की जाँच कर लें। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का पूर्वानुमान लगाया है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी की महिला इकाई की वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में महिलाओं को शीर्ष पद न देने के फैसले का समर्थन किया है। इन महिला नेताओं ने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सिर्फ पुरुषों के ही नेतृत्व वाली व्यवस्था को उचित ठहराया है, हालांकि इसकी कड़ी आलोचना हुई है। एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आज से नई दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में शुभारंभ हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।